मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलतये। तत्त्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय। वीर शासन जयंती से लेकर अष्टमी तक चला और ये द्वितीय अध्याय जो है उसका अंतिम सूत्र अपन आज स्वाध्याय में ले रहे हैं। ये इमे जन्म योनि शरीर लिंग संबंधाहित विशेषाः प्राणिनो। जो यह जन्म योनि शरीर लिंग इन सब के संबंध से प्राप्त हुए हैं भेद जिन्हें ऐसे प्राणी हैं निर्देश्यंत। ये प्राणी इस अध्याय में कहे जा चुके हैं तो देवादय वो देव आदि के हैं क्योंकि ये जीव का अधिकार था तो इसमें ये देवादिकों का वर्णन था। तो ये विचित्र धर्मा धर्म वशी कृताश्चतसु गतिषु नाना प्रकार के पुण्य और पाप के वशीभूत होते हुए चार गतियों में शरीराणि धारयन्त शरीरों को धारण करते हुए किम क्या यथा काल मुक्त आयुषो क्या यथा काल आयु का उपभोग करते हुए मूर्त्यंतराण्यास्कन्दन्ति दूसरे शरीर को प्राप्त होते हैं उत अयथा कालम अपीत्यत आ उत्तरम पठति या फिर अयथा काल भी ये दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि इस अध्याय का यहाँ पर समापन हो रहा है तो आचार्य महाराज जी पूछ रहे हैं आचार्य महाराज से ये पूछा जा रहा है कि इतने सारे जीवों का आपने वर्णन किया और उनके भेद प्रभेद आदि सब बतलाए तो क्या ये सारे जीव यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को प्राप्त करते हैं अथवा अयथाकाल भोग करके भी प्राप्त करते हैं। उसका उत्तर औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषु नपवर्त्यायुष। इस सूत्र से यह सूचित होता है कि जगत के प्राणियों के दो भेद हैं और इस सूत्र में बताए हुए जो प्राणी हैं वो अनपवर्त्यायुष प्राणी है अर्थात इनकी आयु अयथाकाल नहीं भोगी जा सकती ये यथाकाल ही आयु को भोग कर नवीन शरीर को प्राप्त होते हैं अथवा मोक्ष चले जाते हैं। औपपादिकता औपपादिक कौन है ये कहे जा चुके हैं देवनारकाय की देवर नारक औपपादिक जन्म वाले हैं। फिर चरम शब्द स्यांत वाचित्वा तज्जन्मनि निर्वाण निर्वाणार्ह ग्रहण। चरम शब्द जो है चरम का अर्थ लास्ट होता है अंतिम होता है तो इसलिए वो अंतवाची होने के कारण तज्जन्मनि उस जन्म में निर्वाण आरह ग्रहण निर्वाण आरह ग्रहण जो निर्वाण के योग्य है उनको ग्रहण करता है चरम शब्द। चरम शब्द अंत्य पर्यायवाची चरमो देहो ईशान्तमे चरम देहा इति परीत संसारास तज्जन्मनि तज्जन्म निर्वाण रहा। चरम देह का अर्थ होता अंतिम शरीर है जिनका और वे परित संसार संसार के किनारे पर है तज्जन्म निर्वाण रहा उसी जन्म में निर्वाण के योग्य हैं, उनको यहां ग्रहण कर। उत्तम शब्द से उत्कृष्ट वाचित्वा चक्रधरादि ग्रहण, फिर चरमोत्तम में उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है, तो उत्तम शब्द जो है वो उत्कृष्ट वाची होने के कारण उसके माध्यम से चक्रधरादि ग्रहण, चक्रवर्ती आदियों का ग्रहण होगा। अयम उत्तम शब्द उत्कृष्ट वाची, ये उत्तम शब्द उत्कृष्ट का वाची है। उत्तमो देहो ये शांतय में उत्तम देहा इति चक्रधरादि ग्रहण वेदितव्यम्। उत्तम है देह जिनका, वे उत्तम देह वाले चक्रवर्ती आदि हैं, ऐसा ग्रहण करना, ऐसा जानना। उपमा प्रमाण गम्यायुषो संख्ये वर्षायुष, उपमा प्रमाण के द्वारा जानने योग्य जो आयु होती है उसको असंख्येय वर्ष आयुष कहते हैं। अतीत संख्यानाम उपमान प्रमाणेन, जो संख्या से अतीत है और उपमा के प्रमाण से जाने जाते हैं, ऐसे पल्यादिना गम्य आयुर्यशाम, पल्य अधिक के गम्य जिनकी आयु होती है, जिनकी आयु को मापने के लिए पल्योपम सागरोपम ऐसे माप प्रयोग में लाते हैं असंख्यात वाचक, तो वे असंख्य वर्षायुष, असंख्यात वर्षायुम तेरी मनुष्याणा उत्तर कुर्वादिशु प्रसूता हूँ। तो ऐसा समझ लो कि वो उत्तर कुरु देव कुरु आदि भोग भूमियों में जन्मे हुए प्राणी यहाँ पर ग्रहण करने योग्य हैं। असंख्य वर्षायुष जो शब्द आया है सूत्र में, उससे भोग भूमि कुभोग भूमि के जीव ग्रहण किए जाएंगे। बाह्य प्रत्यय वशाद आयुषो ह्रासोपवर्त, बाहरी कारणों के प्रभाव से आयु का ह्रास होना अपवर्त है। बाह्यस्य उपधि उपघात निमित्तस्य विशेषस्त्रादेह सति सन्निधाने ह्रासोपवर्त इति उच्यते। बाह्य जो है उपघात में निमित्त भूत विष है, शस्त्र आदि है, उनका सन्निधान होने पर जो आयु घट जाती है, ह्रास हो जाता है आयु का, उसको अपवर्त कहते हैं। अपवर्त्यमायुरीशां त इमे उपवर्त्यायुष, जिनकी आयु से योग्य है कि जहर आदि के माध्यम से ह्रास को प्राप्त हो जाए, उनको अपवर्त्य आयुष कहते हैं। नापवर्त्य आयुष उन्नपवर्त्य आयुष, जो वैसे नहीं है वो अनपवर्त्य आयुष है। एते ये कौन है, औपपादिका उक्ता, ये जो अभी ऊपर कहे थे औपपादिकादिक, वे अनपवर्त्य आयुष है। नहीं तेषाम आयुषो बाह्य निमित्त तो वशाद अपवर्तोस्ति, उनकी आयु का बाह्य निमित्त के प्रभाव से अपवर्त नहीं हो सकता, ह्रास नहीं हो सकता। फिर शंका है, अंत्य चक्रधर वासुदेवादीनाम आयु शोपवर्त दर्शनाद व्याप्ति, आपने जो ऊपर बातें बतलाई हैं उसमें हमारी एक शंका उठ रही है। शंका ये है कि अंतिम चक्रवर्ती और अंतिम वासुदेव श्री कृष्ण, इनके साथ क्या हुआ था कि अंतिम चक्रवर्ती का भी असमय में आयु घात हुआ था, और कृष्ण जी का भी ऐसा हो गया था कि जरत कुमार का बाण लग गया और उस बाण से उनकी आयु क्षय को प्राप्त हो गई, तो इसलिए उनमें तो अपवर्त देखा गया। आपने कहा था कि उत्तम शरीर वाले जो हैं चक्रधर आदि, उनमें अपवर्त नहीं होता, तो ये तो आपका कथन अव्याप्ति से दूषित है, यानी जितने चक्रवर्ती हैं उनमें व्याप्त नहीं हो रहा है ये कथन, या जितने उत्तम शरीर वाले हैं उनमें ये कथन नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी निकल रहे हैं जिनकी आयु का क्षय हो गया, अपवर्त से ह्रास हो गया, बाण लगने से या और भी निमित्तों से आयु नष्ट हो गई। तो उत्तम देहाश चक्रधर आदय, उत्तम देह वाले जो है चक्रधर आदि हैं, चक्रवर्ती नारायण आदि हैं। तो अनपवर्त्यायुष लक्षण अव्यापी, ये जो आपने लक्षण बताया था ये अव्यापी है। अव्यापी का जहां जहां अपन कथन कर रहे हैं वहां पर सब जगह नहीं जा पा रहा है, लक्षण कुछ छूट रहे हैं। कुत कैसे? बोले अंतस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य, अंतिम चक्रवर्ती कौन थे? ब्रह्मदत्त उनका, और वासुदेवस्य च कृष्णस्य, और वासुदेव जो थे कृष्ण थे उनका, अन्येषां च तादृशानां, और उनके जैसे और भी हुए हैं उनका, बाह्य निमित्त वशाद आयु अपवर्त दर्शनात्, बाह्य निमित्त के कारण उनके आयु का अपवर्त ह्रास देखा गया है। तो फिर ये बात आपकी जमी नहीं। तो आचार्य महाराज देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं, नवा ऐसा मत कहो। चरम शब्द से उत्तम विशेषणत्वात्, ये उत्तम शब्द तो इनका विशेषण था चक्रवर्ती आदि का, लेकिन उत्तम के पहले चरम शब्द आया था कि नहीं? तो चरम शब्द जो है वो उत्तम का विशेषण है। नवैष दोष है, अथवा ये दोष नहीं है। किन कारण, क्या कारण, दोष न होने का क्या कारण है? तो बोले चरम शब्द से उत्तम विशेषणत्वात्, चरम शब्द उत्तम का विशेषण है। चरम उत्तमो देहो ईशांते चरम उत्तम देह, चरम वाला उत्तम देह जिनका है वो चरम उत्तम देह है। यानी अंतिम शरीर तो होना जरूरी है, चरम यानी अंतिम है उत्तम देह जिनकी, वे किसी घटना से किसी निमित्त से आयु के ह्रास को प्राप्त नहीं करेंगे। उत्तम ग्रहण में वही थी चेत। फिर कोई कहते हैं कि अगर अकेले उत्तम कह देते तो क्या नुकसान होता? बोले ना तदा मृत्ये ही स्यादेत, ये ख्याल हो सकता है किसी शंकाकार के मन में कि उत्तम ग्रहण में वास्तु, अकेले उत्तम का ही ग्रहण हो जाता, उत्तम देहा ही थी। आचार्य कहते हैं कि वैसा नहीं हो सकता। क्यों कारण, नहीं होने का कारण क्या? बोले तदनवृत्ते ही, बहुत जरूरी नहीं है कि उत्तम शरीर वालों को निर्वाण हो जाए। इसलिए यो दोष उक्तो व्याप्तिरिति स तदवस्त एव तेषाम देहत्वात्, अव्याप्ति दोष यहां पर भी आ जाएगा कि ये मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। फिर कोई कहते हैं चरम ग्रहण में वेति चेत, तो फिर अकेले चरम ग्रहण कर लो, उत्तम को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य उत्तर देते हैं तस्य उत्तमत्व प्रतिपादनार्थत्वात्, चरम शरीर ही उत्तम होता है ऐसा प्रतिपादन करने के लिए चरम उत्तम शब्द है। स्यान्नतम शरण चरम ग्रहण में वास्तु, चरम ही ग्रहण करने योग्य था या उसका ही ग्रहण किया जाए, चरम देहा इति नार्थ, उत्तम ग्रहण ही नहीं थी, इसलिए उत्तम ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं हुआ। तन्न ऐसा नहीं, ये मत कहो कि फायदा नहीं हुआ। किम कारण, क्या कारण है? बोले तस्य उत्तमत्व प्रतिपादनार्थत्वात्, बोले चरम जो होता है ना शरीर उसमें उत्तम पना होता है, क्योंकि चरम शरीर ही मोक्ष में, चरम शरीर जो होता है वो मोक्ष में साधक होता है, और जो भी मोक्ष में साधक होगा उसको अपन अनुत्तम नहीं कह सकते, इसलिए उसमें उत्तमता है, उत्तमपना है। सही चरमो देह सर्वेशा उत्तम इत्यर्थ प्रतिपाद्यते, वही चरम शरीर सब शरीरों से श्रेष्ठ है, ये अर्थ प्रतिपादित किया जाता है। चरम देहाचित पाठ, कहीं किन्हीं के यहाँ पर चरम देह ऐसा पाठ भी मिलता है। एतेषां नियमेन, इन सब का नियम से आयु अनपवर्त्य इतरेषां नियमः, इनकी आयु किसी घटना से समाप्त नहीं हो सकती, बाकी लोगों के लिए नियम नहीं है। बाकी कोई भी जहर खा ले या कुछ हथियार लग जाए तो जान जा सकती है, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता। हरिवंश पुराण में ही है कि भरत और बाहुबली जब युद्ध के लिए जा रहे थे, फिर मंत्रियों को चिंता हुई कि इनके युद्ध में इनका तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो बाकी सैनिक है निरर्थक नरसंहार होगा, व्यर्थ में मारे जाएंगे। दोनों चरम शरीर थे इसलिए उनका अकाल मरण नहीं हो सकता था, ये बात थी। ये इसी वर्ष ये अध्ययन करके ऐसा निष्कर्ष हमें समझ में आ रहा है कि चरमोत्तम शब्द का सही अर्थ क्या है। अभी तक जो ऊपर की पंक्तियां थी उसके आधार से लगा रहे थे कि जिनका शरीर चरम भी है और उत्तम भी है उनका अकाल मरण नहीं होता, तो चरम और उत्तम शरीर किनका होता है? तीर्थंकरों का नियम से होता है, चक्रवर्तियों का वैकल्पिक है, क्योंकि चक्रवर्तियों की तीन गति है, बलभद्रों की दो गति है, या तो वो देव बनते हैं या मोक्ष जाते हैं। तो फिर नियामक किनके लिए हुआ? चरमोत्तम तीर्थंकर के लिए। और गौण रूप से उनमें भी लगा ले अगर वो मोक्ष चले जाते हैं तो अगर वो मोक्षगामी है कोई बलभद्र या चक्रवर्ती तो उनमें चरमोत्तम लग जाएगा, पर मुख्य रूप से तो तीर्थंकर ही चरमोत्तम देहधारी हो जाएंगे। पर अब इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि चरम और उत्तम ये अर्थ नहीं लेना है। फिर क्या लेना है? चरम है इसलिए उत्तम है, ऐसा अर्थ लेना है। तो चरम को उत्तम का विशेषण बनाया है, और उत्तम क्यों है उसका हेतु ये बताया है कि चरम है इसलिए उत्तम है। तो चरम होने के कारण जो शरीर उत्तम है वो भले ही किसी भी नाम कर्म वाला हो, भले ही वो सुंदर हो या ना हो, भले ही उसके संस्थान आकर्षक हो या ना हो, लेकिन संघनन तो एक ही रहता है चरम शरीर के साथ, वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है। तो वो शरीर मोक्ष में साधक बन रहा है इसलिए उत्तम है। तो चरमोत्तम शरीर किनका माना जाए? तीर्थंकरों का, चक्रवर्तियों का, बलभद्रों का, या सर्व मोक्षगामियों का? किनका माना जाए? ऐसा नहीं, अभी तो बताया ना कि चरम और उत्तम नहीं है इसका अर्थ, जो चरम है वही उत्तम है ऐसा अर्थ लेना है। तो चरम है वही उत्तम है, तो जो जो चरम है वो सब उत्तम है, तो चरम शरीर जितने भी हैं उनका शरीर उत्तम है, ऐसा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए अकेले तीर्थंकर का ना लेकर के सारे चरम शरीरियों का ये आयु का ह्रास किसी घटनावश नहीं होता। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे पांडव महामुनि भी दुर्योधन के भांजे कुर्यवर के द्वारा उपसर्ग को प्राप्त होने पर भी अनपवर्त्यायुष थे, यानी उपसर्ग से उनकी आयु का ह्रास नहीं हुआ, वो अपनी आयु पूर्ण करके ही मोक्ष गए हैं, ये विशेष बात थी। क्योंकि वो चरम शरीर थे इसलिए उनका शरीर उत्तम था, ये लगाना है सब जगह। जो भी चरम शरीर है वो चूंकि चरम शरीर है इसलिए उनका शरीर उत्तम है, और इसलिए चरमोत्तम देह वाले सब अनपवर्त्य आयुष होते हैं, ऐसा यहां पर अर्थ निकलता है। और इससे अगर भिन्न अर्थ इन संस्कृत पंक्तियों से निकलता हो तो फिर हमें बता सकते हैं, हम सुनना चाहेंगे कि इससे भिन्न अर्थ कैसे निकलता है। और देखिए आचार्य अकलंक देव हैं, क्या कह रहे हैं? अप्राप्त कालस्य मरणानुपलब्धे ही अपवर्तना भावयति चेत, जिसकी मौत नहीं आई है उसको कौन मार सकता है। इसलिए ये आप जो बता रहे हो कि हथियार से जहर से आयु का ह्रास होता है, ये बात हमें मान्य नहीं है। कोई शंकाकार कह रहा है, क्योंकि आचार्य तो बता चुके हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई असर नहीं होता और कुछ ऐसे होते हैं जिनको असर होता है उन निमित्तों का, और वो उनकी आयु ह्रास को प्राप्त हो जाती है। 90 साल की आयु लेकर आया कोई और 45 साल में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जाती है, पूरी आयु उसकी वही नष्ट हो जाती है, असमय में क्षीण हो जाती है। ऐसा नहीं कि 45 साल जो बचे हैं उसमें वो प्रेतात्मा बन करके कहीं पुल पर बन रहेगा, 45 साल तक वो बना रहेगा, वहां भटकता रहेगा, ऐसा नहीं। वो भटकती आत्मा वाली बात वहां पर नहीं है, वो तो आयु नष्ट हुई, पूरी नष्ट होती आयु, 45 साल बचती ही नहीं वहां पर। 45 साल की जो आयु बाकी थी वो अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाती है। जैसे मटके में 15 ग्लास पानी बाकी था, तो 15 ग्लास पानी निकालने में कितना टाइम लगता है? समय तो लगता है, पर अगर पत्थर मार दो तो 15 ग्लास पानी अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाता है। वही हिसाब है आयु। तो ये शंका की, तो इतिचेत, ऐसी यदि शंका हो, आचार्य बोलते हैं कि न दृष्टत्वाद आम्र फलाधिपत, ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि असमय में कई घटनाएं होती है। जैसे कच्चा आम है, कच्चा आम जो है उसको पकने में बहुत समय लगेगा पेड़ पर, लेकिन उसको वहां से उतार कर किसी ऐसी चीज में रख दो तो फिर वो जल्दी पक जाता है। यथावधारित पाक काला प्राक, जो जिस प्रकार का निश्चित उदय काल है उससे पहले सोपाय उपक्रमे सत्याम्र फलादीनाम, उपायों के उपक्रम के होने पर आम्र फलादीनाम दृष्ट पाकर, आम्र फल आदि का पाक देखा गया है, तो परिच्छिन्न मरण कालात प्राक, जितनी आयु लेकर आया है उसके उस मरण काल से पूर्व उदीर्णा प्रत्यय प्रत्यय आयुषो भवत्यपवर्त, उदीर्णा के प्रत्यय के होने पर आयु का अपवर्त या ह्रास हो जाता है। और फिर देखिए और आचार्य महाराज समझा रहे हैं इस बात को, अच्छा विषय समझने योग्य। आयुर्वेद सामर्थ्याच, इस बात की सिद्धि आयुर्वेद की सामर्थ्य आयुर्वेद की शक्ति से भी सिद्ध हो जाती है। यथा अष्टांग आयुर्वेद विद भिषक, जैसे अष्टांग आयुर्वेद का विद्वान वैद्य प्रयोगे निपुण, और जो प्रैक्टिकल करने में भी एक्सपर्ट है, यानी आयुर्वेद का जानकार तो है ही है लेकिन प्रयोग में अति निपुण है, अत्यंत कुशल है, वह यथा काल वाता त्युदयात प्राक, यथा काल जो वात आदि दोष है अपने शरीर के उनके उदय से पहले ही वमन विरेचन आदि ना नुदीर्णमेव श्लेष्मादि निराकरोति, वमन विरेचन आदि के माध्यम से जो दोष अभी शरीर में व्यक्त नहीं हुए हैं उनको व्यक्त होने के पहले ही निराकृत कर देता है। जैसे मान लो ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट करने पर कोई चीज निकली, अभी उसके लक्षण आए नहीं है तो फिर पकड़ में आ गई बीमारी, तो लक्षण आने के पहले ही दवा खा करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। अकाल मृत्यु विनाशार्थम रसायनम चोपदिशति, और वह आयुर्वेद का जानकार वैद्य अकाल मरण को निराकृत करने के लिए रसायन का उपदेश भी करता है। ये आचार्य अकलंक देव के शब्द है, अकाल मृत्यु शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। आपको अगर आग्रहवश अकाल मृत्यु को अस्वीकार करें तो एक प्रकार से वो आगम को अस्वीकार करता है, आचार्य अकलंक देव को अमान्य करता है। आचार्य कहते हैं कि अकाल मृत्यु का निराकरण करने के लिए रसायन का उपदेश भी देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है वो वैद्य, ये लेना होगा आपको, स्वर्ण बसंत मालती सितोपलादि चूर्ण आदि आदि जो भी है, अन्यथा रसायनोपदेशस्य वैयर्थ्यम। अन्यथा क्या हो, अब अगर आप नहीं मानते अकाल मरण को तो फिर ये दवाइयों का जो पर्चा है उससे कोई फायदा नहीं है, बेकार है। दवाइयां आपकी जान बचा रही है, इसका मतलब दवाई बिना आपकी जान जा सकती है, इसलिए इससे आयुर्वेद की सामर्थ्य से सिद्ध होता है कि वैसा मरण भी हो सकता है कि जिसमें आयु असमय में नष्ट हो जाए, ह्रास हो जाए उसका। न वादोस्ति, इसमें कोई ऐसा वाद विवाद का विषय नहीं है। अतः आयुर्वेद सामर्थ्याद अस्त्यकाल मृत्यु, आयुर्वेद की सामर्थ्य से सिद्ध होता है कि अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु है। कुछ आपके मन में प्रश्न वगैरह उठ रहे हैं क्या सुनकर के, या एकदम सीधा सरल आ रहा है विषय? हो सकता है पहले कुछ और सुना हो तो फिर उसके साथ ये टकराएगी बात, लेकिन अगर सीधी ये जिनवाणी आप सुनोगे तो फिर ये बात एकदम गले उतर जाएगी। दुख प्रतिकारार्थ इति चेत नोभयथा दर्शनार्थ, अब शंकाकार ने अभी यहां पर विराम नहीं लिया है, वो अभी बात को और आगे खींच रहा है। क्या कह रहा है शंकाकार? कहता है कि दवाइयां तो दुख को दूर हटाने के लिए ली जाती है, मौत को टालने के लिए थोड़ी ली जाती है। एक से होशियार होते हैं शंकाकार लोग, तो आचार्य बोलते हैं कि ना ऐसा मत बोले, उभयथा दर्शनार्थ दोनों बातें देखी जाती है, स्यान मतलब ऐसा ख्याल हो सकता है। दुख प्रतिकारार्थम आयुर्वेदो वेदस्येति, आयुर्वेद का काम तो दुख को दूर करना है, तन्ना ऐसा मत बोलो। क्यों कारण, क्यों क्या कारण है? उभयथा दर्शनार्थ उत्पन्न वेदना वेदनयोर ही चिकित्सा दर्शनार्थ, जिसको वेदना उत्पन्न हुई है उसका भी इलाज होता है और जिसको नहीं हुई है उसका भी इलाज होता है, दोनों की चिकित्सा देखी जाती है। फिर कृत प्रणाशक प्रसंग इति चेत, अब ये शंकाकार ने एक अच्छा दूसरा प्रश्न किया है कि फिर अपने कर्मों का नाश हो जाएगा अगर किसी ने कुछ खिला दिया और अपन मर गए, तो फिर अपन ने जो आयु बांधी थी तो आप जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो आयु जो थी वो तो अपनी नष्ट कर दी किसी ने कुछ खिला पिला करके, तो फिर अपने ही कर्मों का नाश हो जाएगा, अपने कर्मों के नाश का प्रसंग आएगा। आचार्य कहते हैं तन्ना, वैसा नहीं है। किं कारण, क्या कारण? दत्वैव फलम निवृत्ते नाकृतस्य कर्मण फलम उपभुज्यते न च कृत कर्म फल विनाश अनिर्मोक्ष प्रसंगात। आचार्य वो उनका उसकी शंका ये थी कि कर्म को नष्ट कर दिया किसी ने, एकदम गायब कर दिया। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो किया था उसको उसने पूरा भोगा है, चाहे असमय में आयो नष्ट हुई हो या समय पर नष्ट हुई हो, लेकिन असमय में नष्ट होने पर भी उसने जो आयु बांधी थी ना, वो पूरी की पूरी आयु वहां खर्च हुई है। आयु जब तक पूरी खर्च नहीं होगी तब तक मरेगा नहीं, बस गति में अंतर है। एक जो सहज रूप से आयु पूरी हो रही है वो अपने अपनी गति से, जितनी वो बांध करके लाया है, 90 साल की लाया है तो 90 साल में पूरी होती है, और ऐसी स्थितियों में अपवर्तनाघात द्वारा पूरी होने पर वो पहले पूरी हो जाती है। पूरी दोनों में होती है, अपूर्ण नहीं रहती। कृतम कर्म कर्त्रे फलं दत्त्वैव निवर्तते, किया हुआ कर्म करने वाले को फल देकर ही छूटता है। वितार्ध पटशोषवत् अयथाकाल निर्वृत्त पाकर इत्यं विशेष। बस इतना ही है कि कपड़ा आपने भिगा लिया है तो वो सूखेगा तो सही, आप निचोड़ लो उसमें से पानी निकलेगा तो सही। अब अगर आप उसको फैला देते हो तो जल्दी सूख जाएगा। इसी तरह यहां पर जहर वगैरह कुछ खा लेते हो तो आयु जल्दी पूरी हो जाएगी, पूरी जरूर होगी, उसके बिना छुटकारा नहीं है। कर्म के फल का नाश नहीं होता उसके, अनिर्मोक्ष प्रसंगात। फिर मोक्ष न होने का प्रसंग आएगा, दानादिक क्रियारंभा भाव प्रसंगाच। और फिर दो कोई भी दानादिक क्रियाओं को प्रारंभ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब कर्म का फल मिलना तो निश्चित नहीं है, तो फिर मैं दान क्यों करूं, उससे क्या फल मिलने वाला है, छोड़ देगा। पर ऐसा नहीं, किया हुआ कर्म करने वाले को फल देकर ही छूटता है। इस तरह ये आचार्य महाराज कि दो प्रकार से जीव मरण को प्राप्त होते हैं, एक अपनी आयु को अपने समय पर पूर्ण करके और एक अपनी आयु को असमय पर पूर्ण करके। पूर्ण दोनों करते हैं, असमय पर पूर्ण करने वाले कुछ ऐसे साधनों मिल जाते हैं जिससे वो स्थिति बनती है, समय पर पूर्ण करने वाले तो ठीक है अपने समय पर करते हैं। पर जीव दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आयु असमय पर पूर्ण होती ही नहीं है, वो कौन है? तो देव, नारक, भोग भूमिज, कुभोग भूमिज और चरमोत्तम देह वाले अर्थात मोक्षगामी जीव, इनकी आयु असमय में पूर्ण नहीं होती, पूरी आयु करके ही वो, जितनी अवधि में उनको आयु पूरी करनी होती है उससे कम अवधि में वो पूरी करके नहीं जा सकते। इस तरह ये दूसरा अध्याय यहाँ पर आज पूर्ण होता है, इसके उपरांत तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा। आज 2 तारीख है, 2 तारीख को दूसरा अध्याय पूरा, 3 तारीख को तीसरा अध्याय शुरू। जय हम जय दुशासन।